नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वरिन से अपा दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है, कानून बदलने से क्या न्याय बदलेगा। सरकार कानून की किताब में बदलाव कर रही है, इसके लिए देश की संसद में बिल पेश कर दिया है। इसके बदलाव के कारण अंग्रेजों द्वारा बनाया जाना है, लेकिन सब कुछ करने के बाद इससे हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पर गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई।
सर, क्या देखते हैं, कानून बदलने से क्या न्याय मिलेगा।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो
जी सर,
उस समय देश के अंदर राजतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही थी और देश कई भागों में, कबीलाओं में, रियासतों में बंटा हुआ था। उस समय भी कुछ नियम और कानून काम कर रहे थे और उसका फायदा उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया। कानून हर समय रहा है। कानून से न्याय कैसे मिले, यह निर्भर करता है उस देश के शासक पे, उस देश के प्रशासक पे और उसके साथ साथ उस देश की जनता पे। जब तक ये तीनों मिलकर के उस कानून के ढांचे को, उस कानून के दायरे को, उसके नियम को वैधानिकता नहीं प्रदान करेंगे, उसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कानून बदल देने से न्याय नहीं मिलेगा। कानून बनता ही है न्याय के लिए, परंतु आप देख रहे हैं कि अंग्रेज हमारे देश से चले गए, परंतु उनकी अधिकांश नीतियां आज भी हमारे देश के अंदर रखी गई है। इसकी सबसे बड़ी विसंगति जो मैं बता दूं आपको, वह यह है कि जितने भी कानून और कायदे बनाए जा रहे हैं, वह इम्प्लीकेट तो न्यायपालिका करती है उसका, परंतु सारे जो निर्णय आते हैं वो अंग्रेजी में निर्णय आते हैं। हमारे देश की जनता, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा के चलने वाली हमारी क्षेत्रीय भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ हमारी क्षेत्रीय भाषाएं चलनी चाहिए, तब हमारा विकास होता। लेकिन अधिकांश जो निर्णय आ रहे हैं अंग्रेजी में आ रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो हमारी अधिकांश जनता तो उस बात को समझ ही नहीं पा रही है। लगभग लगभग 90% लोग उनके निर्णय को नहीं समझ पा रहे कि निर्णय दे क्या रहे, क्योंकि भाषा की दिक्कत है। अंग्रेज अपने यहां से चले गए, परंतु उनकी मानसिकता आज भी हमारे यहाँ बनी हुई है, लोग उसको लेकर के चल रहे हैं और उनके तमाम नियम और कायदों को आज लेकर के चल रहे हैं। तो किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति अगर गरीब है, कोई व्यक्ति यदि कमजोर है और उसका नाम हम अमीर चंद रख दे, तो वह व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता है। जब तक उसकी सामाजिकता में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में और न्याय की स्थिति में बदलाव नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को अवसर का समता हम नहीं देंगे, तब तक उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यह सरकार कानूनों को इसलिए बदल रही है कि आप देखे होंगे कि देश में एक बड़ा प्रचार चल रहा है योगेश भाई, कि 2014 के बाद ही देश में असली आजादी मिली है, उसके पहले असली आजादी नहीं थी। तो यह सरकार श्रेय लेना चाहती है कि देखिए, हमने आए तो नए नए कानून बना दिए, नए नए प्रावधान कर दिए, और वह कानून किसके नाम से जानी जाएगी, मोदी सरकार के नाम से। यह सरकार आज की तैयारी नहीं कर रही, यह सरकार आज से जो कह रहे हैं ना सरकार मोदी जी की 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो यह सारे काम 2047 के तहत कर रहे हैं कि अगर उस समय तक हमारी सरकार नहीं रही, चाहे वो खुद नहीं रहे, तो भी हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा जाने कि भाई ये मोदी जी काम करके गए। तो सरकार को इससे मतलब नहीं है कि नया स्थापित हो जाए, सरकार को इससे मतलब है कि हमारा नाम स्थापित हो जाए, हमारी सत्ता स्थापित हो जाए, हमारी पार्टी स्थापित हो जाए और हमारी विचारधारा स्थापित हो जाए। उनको देश के न्याय और कानून से कोई मतलब नहीं है।
जी सर, क्या वही कानून की धारा 313 बदलाव है, इससे न्याय प्रणाली में 3 वर्षों के अंदर न्याय मिलेगा, कितना सफल
न्याय
सर इसमें।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती है, और यह भी कहा जाता है कि अन्याय को बर्दाश्त करना भी अपने आप में एक पाप है। दूसरी तरफ वो यह भी कहते थे कि अपने विचारधारा को छिपा करके काम करना भी पाप है। यह सरकार अपनी विचारधारा को छिपा करके काम करने का प्रयास कर रही है। न्याय का मतलब 3 साल नहीं होता है योगेश भाई। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई या कोई गलती नहीं हुई, आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे कैदी जेल में बंद है जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, बहुत सारे ऐसे कैदी है जो मामूली गलती की है। तो यह बताइए कि एक व्यक्ति थोड़ी सी गलती कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम 3 साल बाद आपको न्याय देंगे, तो 3 साल में उस व्यक्ति की जीवन कैसा रहेगा, 3 साल में उसका परिवार कैसा हो जाएगा, 3 साल में उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी। तो आप न्याय को 3 साल पे क्यों ले जाना चाहते हैं, जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे पास उच्च न्यायालय है, हमारे पास निचली अदालतें हैं, हमारे पास आईपीसी की तमाम धाराएं हैं, हम फास्ट ट्रैक बनाए हुए, तो आप 3 साल में न्याय देने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं कह रहे कि हम न्याय तुरंत देंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए कि तारीख पे तारीख की प्रथा नहीं बदल रही है। आज तो देश के अंदर सरकार और न्यायपालिका में एक तरीके से टकराव चल रहा है। सरकार चाह रही कि हम सर्वोच्च हो जाए, न्यायपालिका चाह रही कि हम सर्वोच्च हो जाए। यह कह देना कि हम 313 लगा देंगे, 113 लगा देंगे तो जल्दी न्याय मिल जाएगा, यह केवल कहना है, यह सरकार की मानसिकता है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि लोगों को न्याय मिले। अगर वो चाहती कि लोगों को न्याय मिले तो न्यायपालिका में और संवैधानिक संस्थाओं में इंटरफेयर नहीं करती, दखल अंदाजी नहीं करती, उनको अपना काम करने देती। और सरकार के मंत्री लोग भी ईमानदारी से काम करते, परंतु सरकार के मंत्री लोग खुद ही गलत करते हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आम जनता को 3 साल 6 साल कह करके वोट लेने का काम करते हैं, और 3 साल में तो किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्यों नहीं सरकार कह रही कि हम कानून बदल रहे तो इसलिए बदल रहे कि तुरंत न्याय मिल जाए, एक दो पेशी पे ही न्याय मिल जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था कोई सरकार नहीं कर रही है। यह सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का पॉलिटिक्स कर रही है, और भारत के संविधान के अंदर जो कुछ लिखा गया है उसको बदल करके अपने नाम का ठप्पा लगाने का प्रयास कर रही है।
जी सर। सर हालिया में सदन में सदन के सत्र में जो धारा 144 है
जी,
उन धाराओं को समाप्त किया जा रहा है, वो कितना बेहतर देखते सर आप इस धारा को?
अगर धारा 124 ए समाप्त हो रहा है तो बहुत बढ़िया काम, और इसे समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यह अंग्रेजों ने बना करके गए और अंग्रेज अपने देश पे कब्जा किए थे। कोई भी सरकार जो होती है वो देश नहीं होती है, देश अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है और सरकार उसकी एक बहुत छोटी इकाई होती है। परंतु आज हमारी जो सरकारें है या इसके पहले भी जो सरकारें थी भारत के अंदर, वो अपने आप को देश मान रही है। तो अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रही होगी भाई, या आप सरकार के खिलाफ हम बोल रहे, तो सरकार हमारे ऊपर देशद्रोह का या आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा रही। कितने हमारे पत्रकार बंधु अंदर है, कितने हमारे साथी अंदर है जेल के अंदर, जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ बोला तो सरकार ने कह दी कि देशद्रोही है, देश के खिलाफ बोल रहे। जबकि सच्चाई यह है कि व्यवस्था और सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं होता है। अंग्रेजों ने तो इसलिए नियम बनाए थे कि उन्होंने कब्जा किए थे, उनको अपने कब्जियत को ज्यादा लंबा दिन तक चलाना था, तो वो चाहते थे कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले, क्योंकि हमारा यहाँ पे राज है, हमारे राज के कोई खिलाफ ना बोले। वो तो भारत को अपना देश मान लिए थे, परंतु हमारी आजादी जो चली कि भाई ये हमारा देश, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनसे लड़े, और जब हमारे लड़ते गए तो उनके ऊपर देशद्रोह लगाते गए। परंतु हम तो एक संविधान लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हम एक आजाद देश के नागरिक है, हमारे पास संप्रभुता है, तो उसमें 124 की जरूरत ही नहीं है। हम तो सरकार को न्यायपालिका को इसके लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 124 समाप्त किया है, 124 ए को समाप्त किया है। उसके साथ साथ हम सरकार को यह भी कहना चाहेंगे कि आप अपराधियों की श्रेणी में भी फर्क कीजिए। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराधी है और आपके खिलाफ बोल रहा है तो उसको अपराध की श्रेणी में मत लेकर के जाइए। उसको देखिए कि उसकी गलती क्या है, वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्या कह रहा है, और उस व्यक्ति को आप अपराधी घोषित करने का प्रयास न करिए। राजनीतिक जो व्यक्ति है उनको अलग रखिए। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके बोलने पर आप उसको अपराधी घोषित न कर दीजिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ सॉरी सरकार के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं वो देश के लिए ही बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं तो उनके लिए नियम बनाए, उनको पकड़ा जाए, उनको रखा जाए, परंतु सभी को कह दिया जाए कि यह देशद्रोही है, तो यह कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाहीपूर्ण नीति है, भारत के संविधान का उल्लंघन है और भारतीय संसदीय प्रक्रिया का एक प्रकार से अवहेलना होगा।
जी सर। इसी के अंतर्गत ये हालिया सत्र में धारा 150 की धारा में बदलाव करने का प्रयास को लेकर सर क्या सोचते हैं आप?
अभी तो सरकार के कोई एक चिंतक है, उन्होंने कह दिया कि संविधान ही बदल दिया जाए।
जी सर।
तो अगर इनकी सरकारें रह गई और पूरी तरीके से आ गए तो ये अपनी सरकार संविधान बदलने के कगार पे खड़े कर देंगे। तो योगेश भाई, उसकी औचित्यता नहीं है। औचित्यता इस बात की है, पहले से ही भारत के आईपीसी में सारे दंडों के प्रावधान दिए गए। जरूरत इस बात की है कि उन प्रावधानों को आप ठीक से लागू कर दीजिए। बदलाव की जरूरत है तो आप बदलाव करिए, कोई रोक नहीं रहा है, परंतु आप बदलाव को नाम लेने के लिए चलाएंगे कि हमने बदलाव कर दिया, यह संभव नहीं है। आप देख लीजिए कि क्या 10 साल में इनके सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी है, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है? जो भी भ्रष्टाचारी है इनके साथ जा रहे हो तो सही हो जा रहे, उनके ऊपर कौन से धारा लगाएंगे? तो ये धारा बदल देने से न भ्रष्टाचार दूर होने वाली है और न ही न्याय स्थापित होने वाली है। जरूरत इस बात की है कि सरकार अपनी सत्ता को भूल करके, कुर्सी की लालच को छोड़ करके, वोट की लालच को छोड़ करके न्याय करने का काम करे, तब जाकर के न्याय होगा। आप प्लेटो को पढ़े होंगे, प्लेटो कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और भारत के अंदर तो न्याय प्रणाली रामराजी से चलती आ रही है, तो इनके रामराजी का मतलब है कि सत्ता पाओ, अपना मनमर्जी करो और अपने साथ लोगों को जोड़ो। इनके रामराज में न्याय नहीं है, यह केवल कानून बदलना चाहते हैं और कानून बदल करके अपने नाम का ठप्पा लगाना चाहते हैं, उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा इसमें।
जी सर, सर मेरा अंतिम सवाल है और संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा सर
जी,
कि वर्तमान में सर अपराधों के नियंत्रण के लिए बनाई जा रही नई धाराओं को कितना जो अपराधों को नियंत्रण करने के लिए कितना जरूरी देखते सर आप?
सबसे पहले अपराध को अगर नियंत्रित करना है तो संसद में बैठे हुए लोग कर सत्यनिष्ठ बने, संसद में बैठे हुए लोग अपने आप को जो अपराध कर रहे उसको रोक दे, राजनीतिक दल यह तय कर ले कि अगर किसी भी व्यक्ति पे किसी भी प्रकार का संगीन अपराध घोषित हुआ है, चाहे न्यायालय किया हो चाहे नहीं किया हो, तो उस व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। आज देश में अपराध क्यों बढ़ रहा है कि संसद के अंदर अपराधियों की संख्या बढ़ गई है, बाहुबलियों की संख्या बढ़ गई है, पैसे वालों की संख्या बढ़ गई है, और यही लोग पाल करके बाहुबली और अपराधी बनाने का काम करते हैं। यदि संसद अपने चरित्र को सुधार लेती है, सदन अपने चरित्र को सुधार लेते हैं, तो योगेश भाई न्याय पे और अपराध पे तुरंत रोक लग जाएगा और न्यायिक प्रणाली की स्थापना हो जाएगी। तो जरूरी है कि नेता अपने चरित्र में बदलाव करे, वो गांधी के दर्शन को पढ़े और सत्यनिष्ठ बने, वो खुद अपराध से दूर रहे, तब जाकर के अपराधी प्रवृत्तियां दूर हो सकती है।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर कानून बदलने से क्या न्याय मिलेगा इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई कि आप ज्वलंत सवालों पर हर समय चर्चा कराते रहते हैं।
जी, बड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।